ओम शांति। 16 कला संपूर्ण बनने के सीरीज में अभी जो टॉपिक चल रहा है, विषय चल रहा है, वो है आर्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र बनने की कला। क्योंकि मानव जीवन में हम वर्तमान समय बहुत सारे बंधनों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जो कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, रुकावट डालता है, हमें आगे बढ़ने में व्यवधान पैदा करता है। तो यदि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, तीव्र गति से आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमारे पास उन बंधनों से वो बहुत सारी बातें हैं जिनसे फ्री होने की कला होनी चाहिए। तो आज का विषय है फ्रीडम फ्रॉम पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज। जीवन के बीते हुए काल में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटी जो कि बहुत दर्दनाक थी, असहनीय थी, जिसने हमारे मन को विचलित किया, हमारे मन को गहरा आघात पहुंचाया। तो उन स्मृतियों को लेकर के हम अभी तक भी अपने जीवन में चलते रहते हैं, और जब जब वो स्मृति हमारे मन पर उभर कर आती है उस समय हमारा पुरुषार्थ तो कहां से कहां खो जाता है, लेकिन फिर जीवन में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। उसका वेग इतना तेज होता है जो उसको हम रोक नहीं पाते हैं, और उसमें हमारा एक लंबा समय बर्बाद होता है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारी याददाश्त खराब होती है, और हमारा पुरुषार्थ भी काफी हद तक रुक जाता है। बाबा कहते हैं कि अभी आपका जो उड़ती कला का समय है, समय कम है, मंजिल दूर है, तो आपको उड़ती कला के माध्यम से पुरुषार्थ करना है। लेकिन हम जब तक कि उन पुरानी बीती हुई बातों को जिन्होंने हमारे मन को आघात किया है उनको हम अपने जीवन से निकाल के बाहर नहीं करेंगे, जब तक कि हम उनसे स्वयं को फ्री नहीं करेंगे, तब तक हम मूर्ति कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो मानव जीवन में स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। स्मृति के माध्यम से, मेमोरी पावर के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन में तीव्र गति से आगे बढ़ता है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसकी याददाश्त बहुत शार्प है, तो उसके माध्यम से वो अच्छे अंक अर्जित करता है और उसके माध्यम से उसका भविष्य उज्जवल बनता है। बाबा मुरलियों में विशेषकर डॉक्टर्स या बैरिस्टर्स के बारे में कहते हैं कि कोई कोई इतने शार्प होती है, किसी किसी की बुद्धि एक साथ अनेक दवाइयों की नॉलेज रखते हैं, और कोई कोई बहुत कम बुद्धि वाले होते हैं। तो कोई तो मास में लाखों कमाते हैं और किसी के पास अपने आजीविका के लिए खर्च करने के लिए धन भी नहीं होता है, वो फटाकोट उनको पहनना पड़ता है। तो ये स्मृति कमाल है। तो हमें देखना है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन में पास्ट में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जो हमारे जीवन में रुकावट का कारण बनती हैं, जिनसे हमें फ्री होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो पास्ट में घटे ट्रॉमेटिक बातें, घटनाएं जिन्होंने मन को आघात पहुंचाया है, उनसे हम कैसे फ्री हों। तो पहली बात है कि उनको जो उसका ट्रिगर है उसको जानना, नो द ट्रिगर, क्योंकि हर एक के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटनाएं घटी जिनके माध्यम से उसके मन को ठेस पहुंची। तो उसके बहुत सारे ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि उसके द्वारा निकले हुए शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा एक धक्का लगा, जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे थे तो उसने कुछ ऐसे शब्द हमारे बारे में प्रयोग किया, डायरेक्ट हिट किया, जो उसमें हमारे मन में वो एक बहुत गहरा घाव का रूप दे दिया। और उस व्यक्ति के उस शब्द को हम जीवन में साथ लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है कि हम पुरुषार्थी जीवन में बीच में उसको भूले रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके द्वारा बोले हुए वो शब्द उस समय बुद्धि में, मन में इमर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही वो शब्द उसके मन में इमर्ज होते हैं तो उस समय की फीलिंग क्या होती है, कितनी स्ट्रांग होती है, उस समय की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, जो व्यक्ति उसने जो भी उस समय अच्छा पुरुषार्थ किया हो, अच्छा अभ्यास किया हो, बाबा के साथ के अच्छे अनुभव किए हों, वो एक सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। और ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो ऐसा हमें देखना है कि वो कौन सा व्यक्ति है या उसके द्वारा बोले हुए कौन से वो शब्द हैं जिसने हमारे मन को गहरा आघात पहुंचाया है। तो वो ट्रिगर हमें देखना है कि वो कौन सा ऐसा ट्रिगर है, कौन सा व्यक्ति है। तो पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक ट्रिगर के रूप में हमारे जीवन में, हमारी याददाश्त में समाया हुआ है। दूसरी बात है किसी व्यक्ति का व्यवहार। किसी का व्यवहार ही ऐसा होता है या कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो उस समय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा व्यवधान का काम किया। हम अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते थे और कर भी रहे थे, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ी रुकावट आई। या जब जीवन में कोई विशेष जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसमें हमको उसने मदद नहीं की, धोखा दिया, जिसके कारण हम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सके। तो किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार है वो हमारे लिए एक ट्रिगर के रूप में हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त में, स्मृति में समाया हुआ है, तो उसको हमें जानना है। अगली बात है कि कोई भी परिस्थिति, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी एक परिस्थिति आती है जिस समय व्यक्ति उस परिस्थिति के वश हो जाता है, अधीन हो जाता है। और उस समय जब वो परिस्थिति हमारे जीवन में आई थी उस समय हम उसके अधीन हो गए थे, हम चाहते हुए भी उससे लंबे समय तक उसके अधीन रहे, उससे निकल नहीं पाए। तो उस समय का जो अनुभव था वो अनुभव को हम बीच बीच में हमारे मन पर वो इमर्ज होता रहता है। और जैसे ही वो दृश्य, वो सीन हमारे सामने इमर्ज होती है तो हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है, हमारी गति अवरोध हो जाती है। और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ट्रिगर हैं जिनको हमें, जिन्होंने हमारे मन को दुखी किया है? कोई स्थान, पास्ट में हमारे जीवन में कभी कोई एक ऐसा स्थान था जिस स्थान पर हम गए थे, कोई भी स्थान हो सकता है, इस लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन में या फिर सांसारिक लौकिक जीवन में, जब जब वो स्थान हमारी स्मृति में आता है या जब जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो पुराने जो कड़वे अनुभव हैं, जो खट्टे अनुभव हैं, वो हमारी बुद्धि में इमर्ज हो जाते हैं। वो सारी बातें, उस समय जो घटना घटी वो सारी बातें हमारी बुद्धि में इमर्ज हो जाती हैं और फिर उनके जो अनुभव है, जो फीलिंग्स है, वो लंबे समय तक हमारे जीवन में चलती रहती हैं। तो उससे भी हमें अपने आप को फ्री करना है, उसके लिए पहले जानना है। इसके साथ साथ कोई एक्सीडेंट, जीवन में ऐसे कई दृश्य आते हैं या हमने कभी ऐसा कोई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट देखा जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, तो उस समय जो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा और जब जब हम, जब जब हमारी बुद्धि में वो दृश्य इमर्ज होता है तब तक हमारे अंदर एक भय पैदा होता है, हम न चाहते हुए भी उसके बस हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। तो वो भी एक कारण है, वो भी एक ट्रिगर है कि कभी कोई ऐसा, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई, हमने कोई एक्सीडेंट देखा हुआ है। तो ऐसे और कौन कौन से ट्रिगर हैं? दुस्वप्न। हमने कभी स्वप्न में कभी ऐसा कोई स्वप्न देख लिया है जो कि जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में हमने कभी कभी ख्याल ख्वाब में भी नहीं उसके बारे में नहीं था, और हमने वो स्वप्न देख लिया जिसमें बहुत बड़ी घटना घटित हुई हमने देखी, और वो स्वप्न जब जब हमारे स्मृति में आता तब तक हमको वो भय की अनुभूति कराता है। और कौन कौन से ऐसे ट्रिगर हैं? हर एक के जीवन में घटनाएं घटी हुई होंगी, सभी को उसका अच्छा अनुभव होगा। तो हमें पहली बात है कि हमें उन ट्रिगर को जानना है कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, क्योंकि जब तक हम उन ट्रिगर्स को जानेंगे नहीं तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। नहीं, वो ट्रिगर्स पहले से होंगे तभी वो इमर्ज होते हैं। बीज पड़ा हुआ पहले से है, तो उस बीज को हमें पहले जानना होगा। तो पहली बात है कि उस ट्रिगर को जानना। दूसरी बात है स्वीकार करना, क्योंकि हमने अब तक जीवन में उन बातों को स्वीकार किया हुआ नहीं है। हम चल रहे, बस चल रहे, पुरुषार्थ में कभी अच्छा पुरुषार्थ है, कभी मध्यम पुरुषार्थ है, कभी साधारण पुरुषार्थ है, तो इस राजयोग के पथ पर हम आगे कंटिन्यू बढ़ रहे, लेकिन हमने कभी वो स्वीकार नहीं किया कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी और वो घटनाएं हमारे पुरुषार्थ में रुकावट बन रही हैं। और वो घटनाएं जीवन में क्यों घटी उसके बारे में हम कभी भी उनको स्वीकार नहीं किया, क्यों? कई बार ऐसी बातें होती हैं कि कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें हम दूसरों को दोष देते हैं कि फलाना व्यक्ति उसका जिम्मेवार है, उसने ऐसे ऐसे कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमारी ही गलती थी। तो यदि हम उस बात के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब हम उससे फ्री हो सकेंगे। तो दूसरी बात है कि उसको स्वीकार करना। और बाबा ने कहा कि मानव जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, हर एक के जीवन में जो भी बातें आती हैं, उसका कोई ना कोई कारण का फल है। कभी ना कभी हमने कोई ऐसी गलती की है जिसके कारण वो हमारे जीवन में हमारे सामने वो घटना घटी। बिना कारण के कोई भी बातें सामने नहीं आती हैं, बिना बीज का कोई भी फल नहीं मिलता है। तो जरूर हमने कोई ना कोई ऐसा पास्ट में कोई ऐसी गलती की है, किसी को दुख दिया है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण हमारे जीवन में वो सारी बातें घटी। तो हमें उसको स्वीकार करना है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटी कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार हम स्वयं हैं। तो दूसरी बात है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। तीसरी बात है उनसे होने वाले नुकसान के बारे में जानना, क्योंकि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनसे क्या क्या नुकसान हमारे जीवन में हो रहा है। जबकि हम देखेंगे कि पास्ट की जो बातें हैं जिनसे हमारे मन को दुख मिला है, व्यक्ति मोस्टली उन्हीं बातों के बारे में चिंतन करता रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे बारे में ऐसे शब्द बोले थे। तो हम उसके बारे में चिंतन तो करते हैं लेकिन उनसे होने वाले नुकसान के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। तो हमें उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। यदि हमें उन पास्ट की जो नुकसान वाली बातें, जो घटनाएं घटी हैं, उनसे फ्री होना है, तो उसके लिए हमें उनसे होने वाले नुकसान के बारे में जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब जब हम उन बातों के अधीन होते हैं, जब जब हम उस बातों को अपने मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तब तब हमारा समय कितना वेस्ट होता है। और एक बार व्यक्ति के मन में यदि वो बातें इमर्ज हो जाती हैं और किसी को शेयर करते हैं, तो उसमें कितना समय चला जाता है उसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता है। तो उसमें हमारा समय कितना वेस्ट होता है, तो पहली बात है कि उसमें समय बहुत वेस्ट होता है। दूसरी बात, हमारी एनर्जी, हम जो ज्ञान योग के माध्यम से एनर्जी इकट्ठे करते हैं, अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन जब जब हमने उन बातों का चिंतन किया, वर्णन किया, उसमें हमारे मन की एनर्जी खत्म हो जाती है, पूरी खत्म ही हो जाती है। तो दूसरा नुकसान है कि उससे हमारा मन कमजोर हो जाता है, हमारी एनर्जी लॉस होती है। तीसरा है कि शरीर पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज हम सभी देखते हैं, जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों का एक मूलभूत कारण हमारी सोच है। और कौन सी सोच है? गलत सोच, व्यर्थ संकल्प, पास्ट के बीती हुई बातों का सोच, जिसने हमारे मन को दुखी किया है। क्योंकि जब जब हम उन बातों को सोचते हैं, तो उस समय सोचने के साथ साथ जो हमारे शरीर में जो इंटरनल ग्रंथियां हैं, उनसे जो ऐसा रस निकलता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखेंगे जो अधिक सोचते हैं उनकी याददाश्त भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन उससे इफेक्ट होता है, ब्रेन की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। ब्रेन फिर व्यक्ति को मन को सपोर्ट नहीं करता है सोचने के लिए, तो उससे ब्रेन डैमेज होता है। साथ साथ जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, वो सारी प्रॉब्लम्स विशेषकर इस कारण से होती है कि हमारी सोच बहुत विकृत है। बीपी की प्रॉब्लम है या अन्य जो कई प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक मूलभूत कारण हमारी पुरानी सोच, जिनसे हमारा मन डिस्टर्ब हुआ, उन बातों के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। तो इसका हमारे फिजिकल, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ संबंधों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति पास्ट की यादों में खोया रहता है, तो उस व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसके कारण व्यक्ति जब भी किसी के संबंध में आता है, तो उसके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरा व्यक्ति फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे फिर हमारे संबंध बिगड़ते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो है कि हमारे संबंध इससे बिगड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिससे कि जो हमारे पास्ट की सोच है, जो नेगेटिव सोच है, जो कई कारणों से शुरू हो जाती है, उससे हमारे जीवन में बहुत सारा नुकसान होता है। तो तीसरी बात है कि उसके नुकसान के बारे में जानना, कि जब जब हमने उन पास्ट की बातों को सोचा, चिंतन किया, दूसरों को सुनाया, तो उससे हमारा क्या क्या नुकसान हुआ। हमारा समय वेस्ट जाता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, बुद्धि मलिन होती है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, दिमाग भारी हो जाता है, कई शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां भी उसका एक मूलभूत कारण है। तो कई सारे जो नुकसान हैं उसके बारे में भी हमें जानना है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक इसके बारे में उस चिंतन में डूबा रहता है, वो एक अच्छा ज्ञान योग नहीं कर सकता है। हाँ, जब जब हम योग में बैठते हैं, उस समय वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो भी उसके शब्द, वो सारे बुद्धि में याद आते हैं। हाँ, विशेषकर जब व्यक्ति बीमार होता है, उस समय उसकी बुद्धि में वो सारी बातें चलती रहती हैं कि किसने मेरे साथ क्या क्या किया। इसलिए बाबा कहते ना, खाली मन शैतान का घर। तो जब जब मन खाली होगा, तो उस समय वो सारी बातें बार बार इमर्ज होती रहती हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में होता है, इसलिए हमें उससे अपने आप को फ्री करना बहुत आवश्यक है। तो अगली बात है उसको रिप्लेस करना। बाबा कहते हैं कि हर कारण का निवारण करो। भगवान इस संसार में आया है, तो उसने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली जो पास्ट में बीती हुई घटनाएं हैं या वर्तमान समय चलने वाली कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नुकसानकारक हैं या आने भविष्य में आने वाली घटनाएं, उन हर एक घटना को हम सॉल्व कर सकते हैं, कारण का निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे किसी के शब्द हैं, चाहे किसी का व्यवहार है या कोई ऐसा स्थान है, तो उनको हमें रिप्लेस करना है। बाबा ने हमें हर बात के लिए सारा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान के बिंदु के माध्यम से, उस ज्ञान के पॉइंट्स के माध्यम से हमें उस बात को रिप्लेस करना है। किसी के शब्द यदि ऐसे कड़वे थे जिसने हमारे मन को ठेस पहुंचाया, तो हमें उसके उन शब्दों को रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, और उसको माफ करेंगे, और ड्रामा समझ करके। बाबा ने इसके लिए बहुत सारी बातें बताई हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक नेचर होती है, संस्कार होते हैं। किसी के शब्द, किसी के संस्कार ही होते हैं ऐसे बोलने के। तो जब हमें मालूम पड़ेगा कि किसी के संस्कार, उसके संस्कार ही ऐसे हैं, यदि हम उस बात को स्वीकार करेंगे तो हम लाइट रहेंगे और अपनापन, कि जिसने भी हमारे लिए ऐसे शब्द बोले वो व्यक्ति उस समय माया के अधीन था, बुराई के अधीन था, और वो जिसने बोला वो हमारा अपना अपना ही भाई है या अपनी ही बहन है, अपने ही परिवार का है, अपने ही कुल का है, तो उसको हमें स्वीकार कर लेना है कि उसने जो बोला ठीक है, बोल दिया, अभी हमें उसको रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह पर उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, साथ साथ उसकी जो विशेषता, उसके जो गुण है उसको देखना है। बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा, ऐसी संसार में कोई भी आत्मा नहीं जिसमें कोई भी गुण ना हो। यदि किसी में 99 अवगुण हैं, तो उसमें एक गुण अवश्य है, उसको भगवान ने चुना हुआ है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो देवकुल के महान आत्मा है, भविष्य में देवता बनने वाली है, इसके दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। तो उस आत्मा के जो उसके शब्द थे, जो उसका व्यवहार था, उसको हमें रिप्लेस करना है, और साथ साथ हमें यह भी सोचना है कि उसने वो शब्द जो बोले हैं, हाँ जी, हाँ, तो हमने जो पास्ट में किया है तो उसका उसने रिएक्ट किया है, तो उसको हमें रिप्लेस करना है। अगली बात है, फोकस ऑन पास्ट हैप्पियर मोमेंट। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में सारी खराब बातें ही नहीं घटी हुई हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी अच्छी घटनाएं घटती हैं जिनको हम यदि याद करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो उससे हमारा स्वयं भी उन्नति होती है, स्वयं को भी खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, और अन्य आत्माओं को भी खुशी मिलती है, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ता है। तो हर एक के जीवन में ऐसी अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन घटनाओं को कभी भी याद ही नहीं करते हैं। तो हमें उन अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करना है। इस ब्राह्मण जीवन में जैसे कि हम जब बाबा के बने, तो उस समय से हमारे जीवन में कितनी अच्छी अच्छी घटनाएं घटी होंगी, यदि उसकी लिस्ट निकालें तो एक बहुत बड़ी उसकी लिस्ट बन सकती है, कि हम जब ज्ञान में आए उस समय से लेकर के अब तक हमारे जीवन में क्या क्या सुंदर घटनाएं घटी हैं, बाबा के साथ के अनुभव, ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हैं, दूसरों के साथ के अनुभव हैं, मधुबन के अनुभव हैं, जब हम सेवाओं में जाते हैं तो उसमें सेवाओं के कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, अन्य, तो हमें उन अच्छे अच्छे अनुभवों को याद करना है। अच्छे अच्छे वो जो मोमेंट हमारे जीवन में आए, हमें उसको याद करना है, न कि जो कड़वे खट्टे जो अनुभव हुए उसको याद करना, उसको याद नहीं करना है, क्योंकि हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, अमूमन सभी ये गलती करते हैं कि उसको हम अच्छे अच्छे जो घटनाएं घटी हैं, जो अच्छी अच्छी घड़ियां हमारे जीवन में आई, हम उसको याद ही नहीं करते। जैसे कोई दुकानदार होता है तो उस काउंटर पर वो आगे अच्छी अच्छी चीजें रखता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और बाकी चीजों को पीछे रखता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटी है वो क्या है हमारे लिए एक काउंटर रखने जैसी वो बातें हैं। तो उनको हमें जीवन में हमेशा आगे रखना है, फ्रंट पेज पर रखना है, उसको पीछे नहीं रखना है। हम करते क्या है कि उनको पीछे रखते हैं, इसलिए वो बातें हमारे जीवन में जैसे कि वो हमारे यूज में भी नहीं आती हैं। तो इसलिए हमें उन बातों को हमेशा आगे रखना है जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं। अगली पॉइंट है उनसे सीखना, लर्न। तो हम सभी जानते हैं कि जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया हुआ भी है। उन्होंने ही वास्तव में हमें इस जीवन में हमें वो बातें ही आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहली बात हमें वो सिखाती हैं कि दुनिया से हमें वैराग्य, वेद का वैराग्य बनना है। जब जब ऐसी घटनाएं कोई जीवन में घटी तो उन्होंने हमें उस समय सबसे बुद्धियोग तोड़ने का काम किया। हम चाहते हुए भी उनसे हमारा मन बाजू हो गया। क्यों? क्योंकि उनसे हमें ऐसा खट्टा या ऐसा कड़वा अनुभव हुआ जिनसे हम समझते थे कि ये हमारे बहुत समीप संबंधी हैं, बहुत नजदीकी हैं, ये हमारे बहुत सहयोगी हैं। लेकिन जब हमें उससे ऐसा कड़वा अनुभव हुआ तो उस समय हमें उनसे वैराग्य आया। और वर्तमान समय भी हमारे जीवन में हम उसको याद करते हैं तो हमें वो वैराग्य की स्टेज पर आगे ले जाता है। तो उन्हें हमें सीखना है, वो जैसे कि हमारे लिए एक शिक्षक हैं, टीचर हैं। तो टीचर के रूप में हमें उन बातों को लेना है। तो जब जब यदि कभी जीवन में वो बातें हमारी स्मृति में आती हैं तो हमें उनको टीचर के रूप में लेना है, न कि कोई समस्या के रूप में। हम इस परामर्श जीवन में कईयों के अनुभव सुनते हैं कि उनका जीवन पहले बहुत ही खुशहाल था, आपस में स्नेह सहयोग अच्छी भावनाएं थी, लेकिन जब उनसे ऐसे कड़वे अनुभव हुए तभी उनको उनसे वैराग्य आया और उसी के आधार से वो फिर भगवान के बने, इस ज्ञान में आए। तो उससे कितना उनका कल्याण हुआ। तो जीवन में ऐसी जो घटनाएं घटी हैं उनसे हमें सीखना है, क्योंकि हमारे लिए वो एक शिक्षक का काम भी करते हैं। और जो वो घटनाएं घटी उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और उस सीख को हमने अपने जीवन में अप्लाई किया भी है। साथ साथ हम देखते हैं कि हम उनसे औरों को भी सिखाने का काम करते हैं। जब भी हमारे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हुई होती है और व्यक्ति कहता है कि हमारे सामने अभी ऐसा ही समस्या है, परिस्थिति है, हम क्या करें, तो जब हमारे जीवन में वो समस्या आई थी, हमने उसको पार किया था, उससे हमने जो सीखा था उसके माध्यम से हम दूसरे को भी सिखाते हैं, सिखा सकते हैं। तो वो जो समस्या, जो परिस्थिति थी वो हमारे लिए एक शिक्षक का काम करती है। तो उससे हमें सीखना है। अगली पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में बिजी रहना। हम सभी जानते हैं कि जब जब हम कोई ऐसी क्रिएटिविटी में बिजी रहते हैं तो उस समय हम वो पास्ट की सारी बातों को भूले हुए रहते हैं। तो इसलिए हमें इस जीवन में हमेशा अपने आप को रचनात्मक कार्यों में बिजी रखना है। जितना हम बिजी रहेंगे उतना हम उन बातों से बिजी रहेंगे, क्योंकि जब जब हम बिजी होते हैं तो हमारा मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व होता है और जिस कार्य में हम बिजी रहते हैं उनसे हमें खुशी मिलती है। तो जहां खुशी है, जहां उन्नति है, जहां प्रोग्रेस है, वहां पास्ट की बातें स्वतः ही भूली रहती हैं। तो रचनात्मक कार्यों में भी हमें बिजी रहना है। अगली बात है कि हमें अपने मन को बिजी रखने की कला सीखनी है, क्योंकि सारा खेल मन का है। तो मन जो है हमारे उन्नति का एक श्रेष्ठ आधार भी है और अवनति का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अपने मन को बिजी रखने का एक कला सीखनी है। तो बाबा ने मन को बिजी रखने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक जो बहुत सारी बातें सिखाई हैं उन बातों को हमें टाइम टेबल के रूप में यूज करना है, जिससे कि मन उसमें हमेशा बिजी रहे, इन्वॉल्व रहे। तो जब जब मन उन बातों में बिजी रहेगा तो पास्ट की बातें स्वतः ही हमारे बुद्धि से दूर रहेंगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें मन को बिजी रखने की कला सीखनी है और मन को उसमें बिजी रखना है। अगले पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज वॉकिंग, क्योंकि फिजिकल जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस समय भी हमारा मन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, मन को और बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलता है, और फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा तन स्वस्थ रहता है, तो तन स्वस्थ होने के कारण उसका हमारे मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई खेल है, वॉकिंग है, उसमें हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब जब हम उन बातों में इन्वॉल्व होते हैं उस समय हमारा मन खुशी से प्रफुल्लित रहता है। जिस समय कोई व्यक्ति खेल रहा होता है तो उसमें मन के उस समय उसके मन में कौन से ख्याल होते हैं? पास्ट की कोई बातें उसको याद रहती है उस समय? नहीं रहती हैं। उस समय उसके मन में उमंग उत्साह रहता है। तो इसलिए जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई खेल कूद है या वॉकिंग है, उसमें हमको उसमें इन्वॉल्व करना है। अगली बात है दूसरों का अनुभव सीखना, दूसरों से अनुभव सुनना। हमें अपने पास्ट की कुछ ऐसी बातों हैं जो जिन्होंने हमारे मन को दुखी किया है, डिस्टर्ब किया है, उनसे हमें छूटना है, तो दूसरों के अनुभव सुनना भी, क्योंकि हमारे से आगे जो भी हमारे से बड़े हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें पार की हैं, उन सभी बातों को पास किया है जो हमारे जीवन में आई हैं। तो इसलिए जो पहले से अनुभवी हैं, उन अनुभवी आत्माओं से हमें उनका अनुभव सीखना है, उनसे हमें पूछना है कि आपके जीवन में जब ऐसी कोई घटना घटी थी उस समय आपने क्या किया था, उसमें आपने उसको कैसे फेस किया था। तो उन्होंने जो उसको फेस किया वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो उस अनुभव के माध्यम से हम अपने जीवन में जो कोई घटना घटी है, जो हमारे बार बार हमारे मन में आ रही है, मन को डिस्टर्ब कर रही है, हम उससे अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो दूसरों का अनुभव सुनना ये भी एक बहुत आवश्यक पहलू है। अगली पॉइंट है ज्ञान योग में ज्ञान के चिंतन में मनन में बिजी रहना, मस्त रहना। बाबा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर विधि सिखाई है और बाबा हर दिन मुरली में कहते हैं कि ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो बाबा जो रोज हमें ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं, हमें उन कोई ना कोई एक पॉइंट्स, कम से कम रोज एक पॉइंट्स पर उसका गहराई से चिंतन करना है, मनन करना है। जब जब हम ज्ञान के मनन में बिजी होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा मन स्ट्रांग बनता है, हमारे मन में उसमें खुशी मर्ज होती है, और साथ साथ वो हमारे मन के लिए एक बहुत बड़ी खुराक बन जाती है, और भविष्य में आने वाले समय में वो सारी बातें फिर अपने आप इमर्ज होती रहती हैं, यदि हमने उसका चिंतन किया होगा। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उन पर चिंतन करो, उस पर मनन करो। तो हमें अपने आप को ज्ञान के पॉइंट्स पर, उसके मनन चिंतन पर फोकस करना है, उसको उसमें बिजी रहना है। तो जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन में अपने आप को बिजी रखेंगे, मन को बिजी रखेंगे, तो मन में पास्ट की बीती हुई घटनाएं उनको आने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। अगली बात है योग का प्रयोग करना। बाबा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर विधि बताई, बहुत सुंदर कला सिखाई कि हमारे जीवन में जो जो ऐसी घटनाएं घटी हैं, कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है, घटनाएं घटी हुई हैं, हम उनको योग के प्रयोग के माध्यम से उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास योग की बहुत बड़ी एक शक्ति है, पावर है, क्योंकि हमारा योग सुप्रीम पावर के साथ है। तो योग का प्रयोग करके हमें उन बातों को सॉर्ट आउट करना है। जब जब हमारे जीवन में वो हमारी स्मृति वो बातें आती हैं, इमर्ज होती हैं, हमें उस समय उसका योग का प्रयोग करके उन बातों को समाप्त करना है। तो इसका भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि योग के प्रयोग के माध्यम से पुरानी बातों को समाप्त करना। इसके लिए और भी कई सारी बातें हैं जिन बातों को हम अमल में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तब भी हम पुरानी बातों से सहज ही छूट सकते हैं। जैसे कि साक्षीपन का अभ्यास है, जब जब जीवन में ऐसी कोई स्मृति हमारे बुद्धि में आती है उस समय हमें साक्षीपन की स्थिति का अपने आप को उस स्थिति में स्थित करना चाहिए। उसके लिए हमें पहले से अभ्यास करना है साक्षीपन की स्थिति का। पहले से हमने अभ्यास किया होगा तो जब जब ऐसी कोई कड़वी बात हमारे मन में इमर्ज होती है उस समय हमें अपने आप को साक्षीपन की स्थिति में स्थित कर देना है। उस समय यदि हम उस बात को देखेंगे साक्षी होकर के तो बात हमारे लिए बहुत ही छोटी बात लगेगी। जो बात हमारे लिए एक पहाड़ के समान हमें अनुभव हुई या अभी भी अनुभव होती है जब हम साक्षीपन की स्थिति में होंगे तो वो बात हमारे लिए बहुत ही छोटी सी बात लगेगी और हमारे मन से वो सहज ही दूर हो जाएगी। अगली बात है बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव। हमें व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी बातें उनके शब्द उनका व्यवहार याद रहता है। हमें बार बार वो हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसका मतलब है कि हमने भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है। तो पुराने पास्ट के बीती हुई घटनाओं को भूलने के लिए उनको जीवन से खत्म करने के लिए हमें भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने का उसका अभ्यास हमें बढ़ाना है। उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। जब एक के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे वैरायटी अनुभव होंगे तो पास्ट की बीती हुई घटनाएं बीती हुई बातें बीते हुए शब्द बीते हुए दृश्य वो स्वतः ही जीवन से लुप्त हो जाए क्योंकि इसके आगे वो बहुत ही तुच्छ हैं नगण्य हैं। तो ऐसी ये बहुत सारी बातें हैं जिन बातों पर हम फोकस करेंगे ध्यान देंगे तो जो पास्ट की ट्रॉमेटिक घटनाएं हैं स्मृतियां जो हमारे मन में स्मृति के रूप में बसी हुई हैं संस्कारों में समाई हुई हैं हम उनको जीवन से निकाल सकते हैं और अपने आप को हम उनसे फ्री कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर जरूरी बात है कि मेडिकल ट्रीटमेंट को भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम स्वयं उनको अपने जीवन से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर की राय लेना आवश्यक होता है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओम शांति।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती, जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।